ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे परम पवित्र शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा पवित्र दुनिया की स्थापना का फिर से संकल्प किया और उस संकल्प को साकार रूप देने के लिए मीठे मीठे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस अविनाशी महारुद्र यज्ञ की स्थापना की और हम बच्चों को सारा ही आकर के फिर से जो हमें भूली हुई बातें थी, जितनी भी हमें स्वयं के विषय में, अपने पिता के विषय में, अपने जन्मों के विषय में, या कहें कि इस विश्व के इतिहास भूगोल के विषय में, या कर्मों की गहन गति के विषय में, या फिर हम आदि स्वरूप में क्या थे, हमारा अनादि स्वरूप क्या, और फिर हम कैसे इस चक्र के अंदर पवित्र से अपवित्र बनते आए और फिर से अपवित्र से फिर पवित्र हम कैसे बन रहे हैं, ये सारे राज जो भूले हुए थे वो याद दिलाए, स्मृति दिलाई और हम बच्चों को फिर से इन सारी बातों का ज्ञान सुनाया। जिस ज्ञान को सुन करके हम हर्षित हो रहे हैं और हमें स्मृतियां भी आ रही हैं, क्योंकि हमें स्मृतियां कौन दिला रहा है, मीठे मीठे बाप दादा हमें नंबर वार सारी स्मृतियां दिला रहे हैं कि तुम क्या थे और अब फिर से तुम्हें क्या और कैसा बनना है। तो हमें बाबा ने याद दिलाया कि हम पवित्र दुनिया में थे, जहां श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहां सुख था, चैन था, आनंद था, सब कुछ था, सब प्राप्तियां वहां पर थी, इच्छा मात्रम अविद्या थे, कुछ भी पाने के लिए बाकी नहीं था वहां पर। सारी प्राप्तियां जो भी संसार के अंदर हैं, वो सूक्ष्म और स्थूल और भौतिक सारी प्राप्तियों की उपलब्धि हमें वहां पर थी, परंतु कैसे धीरे 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 हम जन्म पुनर्जन्म के जन्मों के चक्र में पुनर्जन्म लेते 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 जब द्वापर युग आता है और भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो कैसे भक्ति मार्ग में हम बच्चे देह अभिमान के कारण, कुछ विषय विकारों के कारण हम अपने पिता परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि सतयुग में देह अभिमान नहीं था, विषय विकार नहीं थे, हम सभी पवित्र थे और जहाँ पवित्रता है वहाँ कोई समस्या नहीं होती, वहाँ किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होती, किसी भी प्रकार की बेचैनी नहीं होती, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता। परंतु जब देह अभिमान में आए द्वापर युग के अंदर अनेक जन्म लेने के पश्चात, तो देह अभिमान के कारण हमारे अंदर विषय विकारों की प्रविष्टता शुरू हुई और उन विषय विकारों ने हमें दुख और अशांति और बेचैनी का मुखड़ा दिखाया। और जैसे ही हमने दुख पाया, अशांति की शुरुआत हुई और हमें अपने सुख शांति देने वाले दाता सुख चैन में ले जाने वाले हमारे दाता, हमारे पिता परमात्मा हमें याद आए। लेकिन वह समय नहीं था कि प्रभु मेरे सन्मुख हो या मेरा परम पिता परमात्मा मेरे साथ हो, मेरे सामने हो। अब क्या किया जाए? तो हमने उस स्मृति के साथ क्या किया? स्मृति के साथ हमने मूर्ति बनाई जो हमें एकदम बहुत गहरी नहीं, परंतु जो हमें स्मृति अपने परम पिता परमात्मा की आई, उसके आधार पर हमने शिवलिंग बनाया। और हम सभी बच्चे जानते हैं कि सर्वप्रथम सोमनाथ का मंदिर बना, जो कि राजा विक्रम के द्वारा बनाया गया। और उस मंदिर के अंदर जो स्थापित शिव पिता की जो लिंगाकार मूर्ति, ज्योतिर्लिंग नाम से मूर्ति, उस मूर्ति को हमने पूजना शुरू किया। और उस मूर्ति के अंदर हमने यह भावना रखी कि यह मूर्ति नहीं, परंतु यही मेरे परम पिता परमात्मा है, यही मेरा भगवान है, यही मेरा ईश्वर है। और इस प्रकार हमारी भक्ति शुरू हुई। पूजा पाठ वंदना अर्चना ये सब हमारा शुरू हुआ। अब जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो बाबा ने हमें उसके साथ साथ जो हमने अपने मीठे मीठे परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा बाबा के साथ जो वायदे किए थे वो भी हमें याद दिलाए। जो वायदे हमने भक्ति मार्ग से लेकर के और उस मूर्ति के आगे हम करते आए करते आए करते आए, क्योंकि प्यार तो हमारा रहेगा ही रहेगा। यह जो हमारा पिता पुत्र का, जो हमारा भाई भाई का आपस का, या फिर ब्रह्मा बाबा के नाते आपस का जो भाई बहन का प्यार है, जो रूहानी स्नेह है, वह तो हमारा चलता ही आया। क्योंकि ये रूहानी स्नेह जो है वो अविनाशी है। बाकी जो भी देह पर आधारित जिस्मानी स्नेह प्रेम प्यार है, ये सब विनाशी है। और विनाशी इसलिए है कि इस रूहानी स्नेह के अंदर विषय विकारों का जो एक भूत है, पांच विकारों को, पांच विषयों को भूत कहा जाता है, तो उसमें से एक मोह का भूत वह इस रूहानी स्नेह के साथ हमारे में प्रवेश कर लेता है। और हम अपने इस देह के जो भी मित्र संबंधी हैं, माता पिता मामा चाचा नाना दादा पोतरा पोतरी जो भी हैं, सारे मित्र संबंधियों में हमारा शनई शनई माना धीरे 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 मोह परसेंटेज में, प्रतिशत में बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही इन भूतों की प्रवेशता होती है, सिर्फ एक भूत नहीं प्रवेश करता, फिर धीरे धीरे हमारी चाहनाएं, हमारी आशाएं, इच्छाएं और उन इच्छाओं की आपूर्ति पर कामना हमारी पूर्ण नहीं हुई तो गुस्सा, क्रोध का आना, तो क्रोध का भूत। पवित्र थे तो पवित्रता की स्टेज से हम देह अभिमान के कारण नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं, अपवित्र बनते हैं, काम का भूत। तो काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, अहंकार का भूत, तो ये सारे ही भूत हमारे में प्रवेश करते हैं। और फिर समय प्रति समय हमें तंग करते, हमारे परिवार को तंग करते, फिर वो परिवार के द्वारा समाज में उसके वाइब्रेशंस फैलते वातावरण बनता और इस प्रकार मनुष्य आत्माएं धीरे धीरे अपनी ऊंचे स्टेज से नीचे आ जाती। जो मनुष्य जीवन की हाईएस्ट स्टेज थी, उस हाईएस्ट स्टेज से, उस श्रेष्ठ जीवन से वो कनिष्ठ जीवन में आने लग जाती है। फिर से हमें परमपिता परमात्मा, जबकि अब वर्तमान समय कलयुग का अंत है, सतयुग की आदि है, जिसको हम कल्याणकारी संगम युग कहते हैं, जबकि अब हम बच्चे जानते हैं कि हमारे परमपिता परमात्मा हम बच्चों के सन्मुख हैं, हमें स्वयं वो ज्ञान सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति कर रहे हैं, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का वर्षा दे रहे हैं, सब हमको अविनाशी रूप से फिर से मिल रहा है। फिर से हमारी आदि अनादि जो सर्वोत्तम पवित्रता की जो हाईएस्ट स्टेज है, ऊंचे से ऊंची, उसको हम धीरे 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 परसेंटेज में चढ़ती कला में प्राप्त करते जा रहे हैं। तो वायदे क्या क्या बाबा ने याद दिलाए? बाबा ने कहा कि देखो, भक्ति मार्ग के अंदर तुमने मेरे से वायदे किए। क्या वायदे किए? जो मुख्य वायदा हमने बार बार किया वह हमें बाबा सुनाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा ने वायदा याद दिलाते हुए बताया कि तुम बच्चों ने मुझे कहा कि जबी प्रभु आप वापस सृष्टि पर आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, हम आप पर बलिहार जाएंगे, आप किस रूप में पधारेंगे हम आपको उस रूप से पहचानेंगे और आप पर वारी जाएंगे। परंतु इस वायदे को हम निभा नहीं पाए, हम इस वायदे को भी धीरे 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 देहधारियों की स्मृति में हम इतने डूबे इतने देहधारियों के स्नेह के संबंधों में और उनकी यादों में इतने हम लगन में मगन हो गए कि प्रभु की लगन, प्रभु में लगन में मगन होना, उनके साथ का हमारा पवित्र रिश्ता और उस पवित्र रिश्ते के उस शुद्ध संबंध जो हमारा अविनाशी संबंध है और उस अविनाशी संबंध के अविनाशी स्नेह में जो हमने वायदा किया कि मैं बलिहार जाऊंगी, यानी आत्मा की बात है ये। तो आत्मा ने कहा कि मैं बलिहार जाऊंगी, मैं वारी जाऊंगी। अब मैं आत्मा इस समय, इस अंतिम जन्म में चाहे स्त्री के रूप में हूं चाहे पुरुष के रूप, परंतु आत्मा ने वायदा किया। अब बाबा हमें फिर से वायदा याद दिलाते हैं और वायदा याद दिला करके फिर से हमें योग्य बनाकर फिर से हमें अविनाशी वर्षा प्राप्त करा रहे हैं। परंतु उस अविनाशी वर्षे को प्राप्त करने के लिए हमें भी जैसे बाप ने वायदा निभाया कि मैं जब जब धर्म की ग्लानी होगी तब मैं सत धर्म की, फिर से वो देवी देवता धर्म जो कि तुम्हारा ब्राह्मणों का धर्म है, मैं उस ब्राह्मणों के धर्म को स्थापन करने, जो गीता के द्वारा स्थापन हुआ, जो मैंने स्वयं आकर के ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किया, मैं फिर से वही धर्म स्थापन करने और तुम बच्चों को फिर से मनुष्य से देवी देवता पूजनीय अति मीठे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसा बनाने आया हूँ। तो ऐसा यदि बनना है और यदि मेरे से तुम्हें यह अविनाशी वर्षा प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? बच्चे, मैंने वायदा निभाया, अब मीठे बच्चे, आपको भी मैं एक ऐसा रक्षा कवच बांधना चाहता हूँ, मैं आपकी सुरक्षा हो इन भूतों से, इन विकारों से, अपवित्रता से, अपवित्र स्वभाव संस्कारों से, दुखदायी स्वभाव संस्कारों से, बुरी आदतों से, यदि तुम अपनी रक्षा करना चाहो, मैं चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम बच्चों को क्या करता हूँ इस संगम युग पर, जो बच्चे अपना हाथ अति प्रेम से, अति स्नेह से, उस कल्प पहले वाली जो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, अपने उस आदि स्वरूप की, अर्थात मैं ही वह देवी देवता धर्म की आत्मा, मैं ही देवी हूँ, मैं ही देवता हूँ, मुझे फिर से ऐसा बनना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करके, और उस दृढ़ संकल्प को प्रतिज्ञा के रूप में जो पालन करने को बच्चे तैयार हैं, वो मेरी श्रीमत को माने और मेरी श्रीमत को माना, वो मैं कैसे समझूं जब उसका हाथ मेरे हाथ में आए। अर्थात जैसे एक बहन रक्षाबंधन के त्योहार पर अपनी रक्षा करने अर्थ भाई को राखी बांधने के लिए उसके हाथ को, स्वतः ही उसका हाथ बहन के आगे, कलाई आगे बढ़ती है ताकि बहन उसको राखी बांधे और बहन की शुद्ध पवित्र स्नेह के संबंध की भावनाएं और वाइब्रेशंस उसको ऐसे बंधन में बांधे जो भाई की वो रक्षा कर सके अल्पकाल के लिए। परंतु ये परमपिता परमात्मा के आगे हमें हाथ बढ़ाना है, अर्थात तैयार होना है और आत्मा को तैयार करना है, तो आत्मा को तैयार होकर के यह दृढ़ निर्णय, दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए उस परमपिता परमात्मा के द्वारा राखी बांधनी है, और वह राखी का बंधन कहलाता है रक्षा बंधन, जो परमपिता परमात्मा ही कर सकता है, मनुष्य मनुष्य की कभी भी रक्षा नहीं कर सकता, यह निश्चित जानो। समझो आज बहन दूर है कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ न कोई मोटर से पहुँच सके, न विमान से पहुँच सके, न हेलीकॉप्टर से पहुँच सके, किसी भी रीति से जब भाई वहाँ नहीं पहुँच सके तो बहन की रक्षा कैसे होगी। वर्तमान समय ऐसा राज्य चल रहा है इन विषय विकारों का, ऐसी वृत्ति वाली मनुष्य आत्माएं हैं कि भाई क्या, लेकिन चार चार पांच पांच बहनों के रक्षक होने के बावजूद भी जैसे भरी सभा के अंदर पांच पांच पांडव पति, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे गुरु महागुरु भी और अनेकानेक सभा में उपस्थित थे, फिर भी क्या हुआ द्रौपदी का? क्या किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा की? था कोई सक्षम जो उस असुरी राजा के साथ या उस असुर के साथ युद्ध करे और द्रौपदी की लाज बचाए? हमारे महाभारत के अंदर सबसे बेइज्जती का, सबसे शर्मनाक, दर्दनाक यदि इस सृष्टि के अंदर दृश्य हो और दृश्य का वर्णन हो तो यही एक सर्वोत्तम वर्णन और दृश्य है। तो कहने का मेरा भावार्थ यही है कि मनुष्य मदद कर सकता है परंतु अल्पकाल की। इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव पिता आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें स्मृति दिलाते हैं, और वो स्मृति का तिलक जो हम पवित्र चंदन का तिलक लगाते हैं, विशेष बहन भाई को लगाती है, चंदन पवित्रता की निशानी है, तो वो तिलक लगाते हुए स्मृति दिलाई हमें कि तू आत्मा है और तू परमपिता परमात्मा की अविनाशी पवित्र संतान है, और फिर परमपिता परमात्मा की पवित्रता की राखी हम बच्चों के हाथ में पिता बांधते हैं, और उसके पश्चात हमें मुख मीठा कराया जाता है। क्यों? बहन भाई के मुख में मीठी टोली डालती है, मीठी कोई मिठाई डालती है, इसका मतलब क्या हुआ? तो हमें प्रभु ने मीठा बोलना सिखाया, मीठा करना सिखाया, मीठा देखना सिखाया, मीठा बनना सिखाया, तो हम मीठे बनते हैं। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का यह यादगार पर्व है, यादगार दिवस है, और ये रक्षाबंधन ऐसे परमपिता परमात्मा के स्मृति दिलाने का और हम बच्चों को पवित्र बनने का और पवित्रता के बंधन में एक दो को बांधने का ये अति पावन त्योहार है, जो सिर्फ भाई और बहन के बीच में नहीं, ये कोई संबंध का त्योहार नहीं, सिर्फ संबंध का नहीं, लेकिन ये एक ऐसे परम पवित्र अविनाशी स्नेह के संबंध का सूत्र है, जो सूत्र स्वयं प्रभु ने हम आत्माओं को बांधा। इसलिए इस सूत्र को फिर जो भी उस शुद्ध वृत्ति से किसी भी व्यक्ति को बांधते हैं, तो वह व्यक्ति शुद्ध संबंध में बंध जाती है। जब किसी की वृत्ति दृष्टि यदि नारी जाति के ऊपर कहीं भी खराब जाती है या किसी अनैतिक संबंध में जाती है, तो उस नारी को, उस स्त्री को, उस कन्या को, उस बहन को ये मति सूझती है, और यह एक प्रभु ने उसको वरदान दिया है कि वह राखी को याद करके, और वह राखी उस नैतिक वृत्ति दृष्टि वाली व्यक्ति को जो अवैधिक संबंध उनसे बांधना चाहते हैं, या वो अपने अनैतिक संबंध में उसको बांधना चाहते हैं, उसको वह ये शुद्ध पवित्र सूत्र की, प्रभु की स्मृति जो पवित्रता की है, वो उसको राखी बांधकर और उसको स्मृति दिला देती है कि आत्मा आत्मा तो भाई भाई है, लेकिन इस देह में तू आत्मा मेरा भाई है, मैं तेरी बहन। मेरे मन के अंदर कोई भी अपवित्र विचार नहीं, अनैतिक विचार नहीं, और तेरे प्रति मेरे कोई अनैतिक संबंध का संकल्प भी नहीं, अतः इस राखी को तू स्वीकार कर। और वो उसको पवित्र संबंध का, पवित्र स्नेह का सूत्र बांध करके अपने शुद्ध स्नेह का इजहार करती है, और उस व्यक्ति को भी वो वाइब्रेशंस भेजती है जो वो भी अपने मन को परिवर्तन करना शुरू कर देता है। तो ये है रक्षाबंधन का वास्तविक त्योहार। इस रक्षा से हमारी विषय विकारों से रक्षा होती है, बुरी आदतों से, या विषयी स्वभाव संस्कार, ये जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटीज है, उनसे रक्षा होती है, और ये रक्षा करते हैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा। तब से लेकर के यह रक्षाबंधन का त्योहार विस्मृति को प्राप्त होते होते आज एक स्थूल रूप बन गया है, और बहन भाई को राखी बांधती है, तो ये एक जैसे ऐसी जो तभी थोड़ी सी जल रही है, जो कि थोड़ा सा उसमें घिरता है स्मृति का, और उस स्मृति के घिरत के साथ बहने अपने भाई को राखी बांधकर और ये शुद्ध संबंध का पावन त्योहार मनाती है। ओम शांति।